وقال الذي اشتراه من مصر، مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت اور احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کا قدم جما دیا کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ اور جب یوسف علیہ السلام پختگی کی عمر کو پہنچ گئے تو ہم نے اس کو قوت فیصلہ اور علم دیا۔ ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 21 اور 22، 21 to 22۔ اس کا عنوان ہے یوسف کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ۔ کل تک کنعان میں تھے۔ کنعان ایسے ہی ہے جیسے آج پاکستان کا کوئی پرانا چھوٹا سا گاؤں کہ جہاں بجلی اور پانی بھی نہ ہو اور تعلیم کے کوئی انتظامات نہ ہو۔ یوسف علیہ السلام اگر کنعان میں رہتے تو زیادہ سے زیادہ کیا پاتے؟ اپنے باپ سے علم پا لیتے، اور وہ انہوں نے پا لیا ہوا تھا اب تک الحمدللہ۔ لیکن وہاں کوئی ایسے مینس نہیں تھے کہ جو بندے کو بڑے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا سکھائیں، مینر سکھائیں، کیونکہ انسان پڑھے لکھے ماحول میں بیٹھتا ہے نا تو اس کا انداز بھی پڑھا لکھا ہونے لگتا ہے، اور جب انسان اجڑ اور گنوار لوگوں میں بیٹھتا ہے نا کہ جو چیختے چلاتے اور شور کرتے اور اپنے حالات سے بھی بے نیاز ہوتے ہیں تو اس کی بھی عادات کچھ اسی قسم کی ہونے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یوسف کو نکھارا جائے۔ ابھی تک روحانی تعلیم پوری ہو چکی تھی، باپ نبی تھے، دین کی تعلیم پا چکے تھے، اب وقت آ چکا تھا کہ ان کو اب اللہ دنیاوی تعلیم سکھائے۔ اور مصر اس وقت ایسے ہی تھا جیسے آج کا کوئی ویسٹرن کنٹری۔ آج بھی لوگ اپنے بچوں کو پڑھنے لکھنے کے لیے بڑی یونیورسٹیز میں بھیجتے ہیں دوسرے ملکوں میں۔ کتنا خرچہ، کتنی محنت، کتنی مشکل سے داخلہ ملے، پھر اس کے بعد وہاں کے مسائل۔ لیکن جس کو اللہ چنتا ہے نا، اللہ اس طرح بلاتا ہے کہ پھر وہ جاتا نہیں بلکہ بلایا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں گئے، عزیز مصر نے ان کو اپنے گھر میں رکھا، خرید لیا تھا، غلام بن کے گئے تھے۔ لیکن وہ شخص جو تھا وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ ان کی قدر کرنا، شاید بیٹا بنا لے، یعنی مین کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے عزت نہیں ہونے دیا۔ غلام بنے لیکن اللہ نے عزت خراب نہ کرنے دی، اور پھر اس طرح یوسف علیہ السلام جو تھے آپ سمجھ لیجئے کہ کنعان کے گاؤں سے نکل کے ایک ویسٹرن کنٹری میں آ گئے، اور یہ تھا اللہ کا فیصلہ۔ آپ اس میں سے ہائی لائٹ کیا کریں گے؟ آیت نمبر 21 میں سے مکنہ لیوسف فی الارض، اس طرح ہم نے یوسف کو زمین پہ قرار دیا، پاؤں جما دی ہم نے یوسف کے۔ یہ ہے اللہ کے وعدے۔ اللہ نے جو کام کرنا ہوتا ہے نا تو اس طرح کروا لیتا ہے۔ پھر یہیں ان کو علم ملا، نبوت ملی، دانائی ملی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین قوت فیصلہ دی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عزیز مصر نے معمولی کپڑے میں چھپی ہوئی ایک شاندار شخصیت کو پہچان لیا، کہنے لگا یہ غلام نہیں لگتا، یہ شریف گھر کا لڑکا لگتا ہے، لگتا ہے یہ کسی کے ہاتھوں میں آ گیا، اس کو کسی نے بیچ دیا ہے، لہٰذا اس کی تم کیئر کرنا۔ اور اس طرح یوسف علیہ السلام تقریباً 40 سال تک، روایات میں آتا ہے کہ اس گھر میں رہے، جوانی آ گئی، اس دور میں عمریں بھی لمبی ہوتی تھیں، آج کی جوانی 40 سے پہلے کی ہے تو اس دور میں 40 سال کی عمر ہو سکتا ہے کہ ایک خوبصورت عمر ہوتی ہو۔ اور اس طرح یوسف علیہ السلام پھر وہاں سے علم بھی سیکھتے رہے۔ عزیز مصر کے گھر میں رہنے کی وجہ سے وہاں بڑے لوگوں کا آنا جانا تھا، شاہی آداب سے بھی آگاہ ہو گئے، کیونکہ اصل میں تو یہ تیاریاں کسی اور کام کی تھیں۔ اگر سیدھا کنعان سے اٹھ کے ایک لڑکا گنوار اور اجڑ آتا تو ہو سکتا ہے کہ عزیز مصر اپنے گھر کا دروازہ نہ کھولتا، لیکن اللہ نے اس کو اس طرح سے توفیق دی کہ اس نے خرید کے خود یوسف علیہ السلام کو نہ صرف اپنے گھر میں رکھا بلکہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی دعوت بھی دی۔ اب آگے کیا ہوتا ہے؟ یہ یوسف کی اب جوانی کے حالات ہیں۔ وراوتہ التی ہوا فی بیتہا، اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے یوسف کو بھسلانا شروع کر دیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے، اور دروازے بند کر کے کہنے لگی لو آ جاؤ۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا، بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ اس عورت نے یوسف کی طرف کا قصد کیا اور یوسف اس کا قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے، یوں ہی اس واسطے سے کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کرتے، بے شک وہ چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا، اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا تو کہنے لگی جو شخص تیری عورت کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اور کوئی دردناک سزا دی جائے۔ یوسف نے کہا یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی، اور عورت کے قبیلے ہی کے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور اگر اس जिसका कुर्ता पीछे की जानिब से फाड़ा गया हो तो औरत झूठी है और यूसुफ सच्चों में से है। खावन ने जो देखा तो यूसुफ का कुर्ता पीछे की जानिब से फाड़ा गया है तो साफ कह दिया कि ये तो तुम औरतों की चालबाजी है, बेशक तुम्हारी चालबाजी बहुत बड़ी है। यूसुफ अब इस बात को आती जाती करो और ए औरत तो अपने गुनाह से तौबा कर, बेशक तू गुनाहगारों में से है। और शहर की औरतों में चर्चा होने लगा कि अजीज की बीवी अपने जवान गुलाम को अपना मतलब निकालने के लिए फिसलाने लगी है। इनके दिल में यूसुफ की मोहब्बत बैठ गई है, हमारे ख्याल में तो वो सरीह गुमराही में है। इसने जब इनकी इस पुरफरेब गीबत का हाल सुना तो इन्हें बुलवा भेजा और इनके लिए एक मजलिस मुरतब की गई और इनमें से हर एक को छुरी दे दी और कहा है यूसुफ इनके सामने चले आओ। इन औरतों ने जब इसे देखा तो बहुत बड़ा जाना और अपने हाथ काट लिए और जुबान से निकल गया कि हाशा लिल्ला, ये इंसान तो हरगिज नहीं, ये तो यकीनन कोई बहुत ही बुजुर्ग फरिश्ता है। इस वक्त अजीज मिस्र की बीवी ने कहा, यही है जिनके बारे में तुम मुझे ताने दे रही थी। मैंने हर चंद इससे अपना मतलब हासिल करना चाहा, लेकिन ये बाल बाल बचा रहा। और जो कुछ मैं इससे कह रही हूँ अगर ये ना करेगा तो यकीनन ये कैद कर दिया जाएगा और बेशक ये बहुत ही बेइज्जत होगा। काला रब्बि सिजनु अहब्ब इलैया मिम्मा यदउननी इलैह। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, जिस बात की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं इससे तो मुझे जेल खाना ही बहुत पसंद है। अगर तूने इनका फन फरेब मुझसे दूर न किया तो मैं तो इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और बिल्कुल नादानों में से जा मिलूंगा। इसके रब ने इसकी दुआ कबूल की और इन औरतों के दाव पेच इससे फेर दिए, यकीनन वो सुनने वाला और जानने वाला है। सुम्मा बदा लहुम, फिर इन तमाम निशानियों के देखने के बाद भी इन्हें ये मसलहत मालूम हुई कि यूसुफ को कुछ मुद्दत के लिए जेल खाने में डाल दें। अल्लाह अकबर। ये थी आयत नंबर 23 से 35, 23 से 35। इन आयात का उन्वान लिखिए, नेमत आजमाइश बन गई। क्या नेमत थी यूसुफ के पास। कहते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम खूबसूरत बहुत थे। एक रिवायत में आता है कि दुनिया का आधा हुसन यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया गया। और जो नेमत होती है ना इंसान के पास, वही आजमाइश होती है। जिसको अल्लाह हुसन दे देना, उसकी ये बड़ी आजमाइश है कि अब इस हुसन को संभाल के कहाँ रखे। जब अल्लाह अच्छा फिगर दे दे तो ये आजमाइश है कि अब इस कमर को दूसरों को ना दिखाओ। और इस आजमाइश में जब औरतें मुब्तला कर दी जाती हैं तो फिर अल्लाह ही जिसके दिल में अपना खौफ डाल दे वही बचेंगी, वरना अपने हुसन की नुमाइश औरत के लिए वाकई फितनों का जरिया बन जाती है। किसी को अगर अल्लाह ने अच्छा फिगर नहीं दिया, वो तो हो सकती है अपने आप को बचा के रखे, लेकिन जब अच्छा जिस्म हो तो जुबान पे भी बातें आने लगती हैं कि अल्लाह ने हुसन दिया तो दिखाने ही के लिए है। लेकिन जिस रब ने दिया उसने ये भी तो बताया कि किसको दिखाओ और किसको न दिखाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर अजीज़े मिस्र की बीवी का ये हमला किस बात की गवाही है कि उस दौर में हालात कितने बुरे थे। मर्द तो मर्द, औरतें भी दूसरों को गुनाह की तरफ माइल करने में इतनी बेबाक थी। क्या आपने देखा कि पहले एक औरत थी फिर पूरी औरतें हो गईं। जो कोशिश मुफसरीन कहते हैं कि अजीज़े मिस्र की बीवी ने की, वही कोशिश उसकी दोस्तों ने भी बाद में की। और वो यूसुफ जो अपनी जान को बचाते हुए, अपने ईमान को बचाते हुए अपने आप को बचा रहे हैं और अल्लाह से कह रहे हैं कि अल्लाह मुझे इस खुले माहौल की जरूरत नहीं, मुझे ये आज़ाद पसंद माहौल पसंद नहीं है, इससे तो बेहतर है मैं कैद में चला जाऊं, मेरा दिल तो महफूज होगा, मेरी आंखें तो महफूज होंगी, मेरे दिल में कोई गलत ख्याल तो नहीं आएगा। ये कैसे होता है? ये तब होता है जब अंदर की दीवारें उठ चुकी हों। आज हम परेशान होते हैं, बेटों को क्या करें, शौहरों का क्या करें, किसके साथ कैसे मामला करें, तो याद रखिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम इस बुरे माहौल में कैसे बचे, ये उस बाप की तरबियत का नतीजा था। अगर बचपन में ये बात ना मिली होती तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कभी भी इस हालात में अपने ऊपर काबू ना पाते। अगर आप इसको देखें तो कौन सी चीज़ थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम इस दावत को कबूल ना करते। गुलाम भी थे, परदेश में थे, कोई देखने वाला नहीं था, औरत पहल कर रही थी, किसी का कोई खौफ नहीं हो सकता था, खूबसूरती भी थी, जवानी भी थी, कुंवारे भी थे, कोई हुज्जत रह जाती है ये कहने की कि हम क्या करें फिर, जब हमारे पास हलाल नहीं तो फिर हम हराम से करेंगे? फिर हुज्जत रह जाती है कि यहाँ तो सब करते हैं ये काम, हम भी कर लें? क्या फिर ये हुज्जत रह जाती है कि अच्छा अब क्या करें फिर, जहाँ इतना फितना हो औरतों का तो फिर हम कैसे बचें? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा तो अल्लाह ताला 7 किस्म के लोगों को अपने अर्श के साय में रखेगा और उसमें से एक वो शख्स होगा कि जिसको किसी आला नसब वाली औरत ने बुराई के लिए बुलाया और उसने उसको अल्लाह के खौफ से रिजेक्ट कर दिया। कल यूसुफ ने रिजेक्ट किया तो क्यों किया? क्योंकि यूसुफ के दिल में तकवा और ईमान था। आज आपके शौहर और आपके बच्चे और आप खुद भी अगर इसको रिजेक्ट करेंगी तो उसमें भी यही सोच बनेगी। जिस चीज की जरूरत है वो क्या है? ईमान और तकवा को बढ़ाने की। दुनिया में ये नहीं हो सकता कि आप बच्चों को छुपा के किसी कोठरी में बंद कर दें। ये नहीं हो सकता कि आप ऐसी दुनिया में ले जाएं कि जहां औरतें अलग हो और मर्द अलग हो। इसी दुनिया में रहना है, इधर ही इंट्रेक्शन होना है। ठीक है, जब हम ऐसे गंदे माहौल में रहते हैं कि जहां फितने बहुत हों, वहां फिर कोशिश भी ज्यादा होनी चाहिए। वहां ज्यादा टूटने का डर है। बात लोग कहते हैं क्या करें, बच्चों को कहाँ ले जाएं, क्या करें, पाकिस्तान चले जाएं, वहां चले जाएं, वहां चले जाएं। मैं वहां एक छोटी सी मिसाल देती होती हूँ, आपको भी दे देती हूँ। मसलन आप देखिए कि एक शख्स उसको तैरना नहीं आता। अब अगर वो समंदर पे गया और खेलते खेलते डूब गया तो डूब जाएगा ना, उम्मीद है कि बचे भी ना। इसी तरह वो शख्स अगर किसी दरिया के किनारे खेल रहा हो और वहां भी उसका पांव स्लिप हो जाए, तैरना नहीं आता बस, फिर भी डूबेगा। और ऐसा शख्स अगर किसी मौके पे घर के बाहर या किसी जगह छोटे से स्विमिंग पूल में भी अगर गिरता है और तैरना ना आए तो भी डूबेगा ना। असल चीज क्या है? तैरना सिखाइए। अगर आप किसी ऐसे माहौल में है जहां बुराई इस तरह सर खोले मुंह खोले बैठी है तो वो समंदर में डूबना है। आप उसको ले जाते हैं थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड माहौल में, चलें पाकिस्तान ले ले, मिसाल दे रही हूँ कि अपने मुल्क में ले जाते हैं तो चले वहां समंदर नहीं लेकिन माशाल्लाह दरिया वहां भी बहुत है और मौजे मारते हुए। अब वहां भी अगर बच्चे को तैरना नहीं सिखाएंगे तो सिर्फ पाकिस्तान में मूव हो जाना उसका हल नहीं है। और आप वहां से भी उठते हैं और आप सऊदीया में मूव हो जाते हैं कि जहां इस वक्त निस्बतन दूसरी जगह से ज्यादा दिखती हैं इस्लामिक वैल्यूज, तो वो ठीक है, वो बन गया आपके लिए एक स्विमिंग पूल, लेकिन तैरना आएगा तो फिर ही बचेगा। असल बात ये कि आप सिखाते क्या हैं, आपकी तालीम कैसी है। और वाकई जो माँ बाप खुद समझते नहीं उनको तो कभी ऐसी जगह पे अपने आप को और बच्चों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ना उनको तैरना आता है ना बच्चों को आता है। इसीलिए देखेंगे नस्लों की नस्लें डूब रही हैं। पहले माँ बाप इन्वॉल्व थे और अब बच्चे इन्वॉल्व हैं। पहले बाप की गर्लफ्रेंड्स आती थी घरों में तो अब बेटों की आती हैं। ये कहानियां कोई पुरानी नहीं है, ये इर्द गिर्द की कहानी है। ये अलग बात है कि हम बाहर से बहुत अपने आप को खुश न रखें, लेकिन दिलों के अंदर और घरों के अंदर और नस्ब को जो दाग लग चुके हैं वो दाग कोई ढके छुपे नहीं है। तो लिहाजा यूसुफ अलैहिस्सलाम के किरदार से जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो क्या है कि उन्होंने उस वक्त अपने आप को रोक लिया। फिर आप देखिए कि जब किसी मुआशरे के अंदर इस तरह की हद होने लगे कि औरतों का ये हाल हो जाए तो सोचिए मर्दों का क्या हाल होगा। इसका अंदाजा होता है अजीज मिसर के बीवी के सेक्शन पे कमेंट से। कोई कमेंट भी नहीं दे रहा, ए औरत ये तुमने अच्छा नहीं किया। और वाहिद में नहीं कह रहा इन्ना कैदी कुन्ना। अब मैं इसको डिटेल में नहीं कर रही, इंशाल्लाह हम करने वाले हैं अपनी आरकेपी क्लास में, हमारी तकरीबन रमजान के फौरन बाद जो सूरह यूसुफ ही चलने वाली है, हो सकता है एंड पे भी शुरू हो जाए। लेकिन आप देखिए कि इतनी बातें, सिर्फ इस सूरह यूसुफ पे एक इतनी मोटी तफसीर है कि मेरा ख्याल है कि एक पूरे बड़े कुरान पाक के करीब है कि इस एक सूरह यूसुफ से कितने सबक निकलते हैं। लेकिन उसके लिए तो वक्त चाहिए ना। अब वक्त नहीं है तो हमें तो बस इसको जल्दी से करना है, क्योंकि एक महीने में तो फिर हम इसका पूरा हक नहीं दे सकते। लेकिन बहरहाल ये है कि इस चीज से हमारे लिए बहुत सारी बातें निकलती हैं। और इससे आप देखिए कि एक और भी चीज छोटी सी आप नोट कर लेते हैं, और वो क्या है कि औरत होशियार थी। जब देखा कि सहेलियां जो हैं वो मुझे पूरा कह रही हैं तो कहा मैं तुम्हें भी पकड़ती हूँ। ये अय्यारी होती है। जब इंसान के गंदे दिल के साथ अय्यार सोच भी शामिल हो जाती है तो वो इंसान फिर दूसरों से ज्यादा फितना और फसाद फैलाता है। फिर इससे एक और चीज भी हम देख रहे हैं कि लस्ट और ग्लैमर पे जो मोहब्बतें मबनी होती हैं ना, वो हालात को देख के साथ ही रुख बदल देती हैं। अभी तक क्या दावत दे रही है और शौहर को देख के कैसे पलटी कि देखो ये तो तुम्हारी बीवी से बुराई कर रहा है। इससे पता चलता है कि मोहब्बत की ये बुनियाद, कि जिस बुनियाद को आप लस्ट और लव की बुनियाद कहें, वो इतनी स्ट्रांग और पायदार नहीं होती। अब यूसुफ अल इस्लाम की जिंदगी का तीसरा दौर शुरू होता है। पहला क्या था? बाप की गोद से कुआं। दूसरा क्या था? कुएं से अजीज मिस्र, और अब अजीज मिस्र के घर से जेल। जेल में क्या होता है उसको अब हम देखेंगे। वह दखल माहो सिजना फतेयान। इसके साथ ही दो और जवान भी जेल खाने में दाखिल हुए। इनमें से एक ने कहा कि मैंने ख्वाब में अपने आप को शराब निचोड़ते देखा है, और दूसरे ने कहा मैंने अपने आप को देखा है कि मैं अपने सर पर रोटी उठाए हुए हूँ जिसे परिंदे खा रहे हैं। हमें आप इसकी ताबीर बतलाइए, हमें तो आप खूबियों वाले शख्स दिखाई देते हैं। यूसुफ ने कहा तुम्हें जो खाना दिया जाता है इसके तुम्हारे पास पहुंचने से पहले ही मैं तुम्हें इसकी ताबीर बतला दूंगा। ये सब उस इल्म की बदौलत है जो मुझे मेरे रब ने सिखाया है। मैंने इन लोगों का मजहब छोड़ दिया है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और आखरत के भी मुनकर हैं। मैं अपने बाप दादाओं के दीन का पाबंद हूँ, यानी इब्राहिम इसहाक और याकूब के दीन का। हमें हर किस से सजावार नहीं कि हम अल्लाह ताला के साथ किसी को भी शरीक करें। हम पर और तमाम और लोगों पर अल्लाह ताला का ये खास फजल है, लेकिन अक्सर लोग ना शुक्री करते हैं। ए मेरे कैद खान, खाने के साथियों, क्या मुतफर्रिक कई परवरदिगार बेहतर हैं या एक अल्लाह जबरदस्त ताकतवर? इसके सिवा तुम जिनकी पूजा पाठ कर रहे हो वो सब नाम ही के नाम हैं, जो तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने खुद ही घड़ लिए। अल्लाह ने इनकी कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई, फरमा रवाई सिर्फ अल्लाह ही की है। इसका फरमान है कि तुम सब सिवाय इसके किसी और की इबादत न करो। यही दीन दुरुस्त है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ऐ मेरे कैद खाने के रफीको, तुम दोनों में से एक तो अपने बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर हो जाएगा, लेकिन दूसरा सूली पर चढ़ाया जाएगा और परिंदे इसका सर नोच नोच कर खाएंगे। तुम दोनों जिसके बारे में तहकीक कर रहे थे, इस काम का फैसला कर दिया गया, और जिसकी निस्बत यूसुफ का गुमान था कि इन दोनों में से ये छूट जाएगा, इससे कहा कि अपने बादशाह से मेरा जिक्र भी कर देना। फिर इसे शैतान ने अपने बादशाह से जिक्र करना भुला दिया और यूसुफ ने कई साल कैद खाने में गुजारे। ये थी आयत नंबर 36 से 42। इन आयतों का उन्वान है कैद खाना अजीम तर्स जीना बन गया शाही महल तक रसाई का। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से निकले तो अल्लाह ताला ने अजीज़े मिस्र के आरामदेह माहौल में रखा, क्योंकि यूसुफ ने उस कुएं को भी खुशी से कबूल कर लिया था। उसी यूसुफ ने अपनी इज्जत और अपनी निगाहों की हिफाजत के लिए जब कैद खाने को दिल की खुशी से कबूल किया, अल्लाह ने उनके वहां से निकलने के इंतजाम कर दिए। लेकिन उससे पहले कुछ तैयारियां थीं, और वो क्या कि कैद में ही अल्लाह ताला ने इनको इल्म और हिकमत से नवाजा, नबुवत मिल चुकी थी। अब ये वो वक्त था कि तन्हाइयों को भी इन्होंने ज़ाया नहीं किया, और वहां भी अल्लाह ताला ने इनकी रूहानी तालीम का इंतजाम किया। किस्से के बहुत सारे पहलू हमें लफ्जों में नहीं दिखते, क्योंकि कुरान पाक के किस्सों का बयान हमारे किस्सा गो जो लोग होते हैं उनकी तरह नहीं है कि कलाबे मिलाएं और जो बातें ना मिले उसको खुद ही जोड़ लें और इस तरह की कहानियां पेश की जाएं कि लोग अलिफ लैल भी कहानी बनाएं। लेकिन कुछ चीजें हमें इमेजिनेशन से यहाँ सोचनी पड़ती हैं, जिसमें से ये भी है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का इल्मी सफर शुरू हो गया। यहाँ बात करूंगी कि जब एक इंसान जेल खाने तक में पहुंच जाए, अगर उसको अल्लाह का दीन सीखना है तो अल्लाह सिखा देगा, और जो आज़ाद ज़िंदगी में महलों जैसे घरों में रहते हुए और रानियों और मलकाओं जैसी ज़िंदगी गुजारते हुए कि दौलत जिनके घर की बांधी हो और दुनिया की हर सहूलत मौजूद हो, अगर वो बंदा अगर अल्लाह के दीन से ताल्लुक ना रखेगा तो फिर उसको वो खूबियां नहीं मिल सकती जो यूसुफ को मिली। आपको पता है कि हमारे असलाफ में चंद आइमा इकराम ऐसे भी थे कि जो जेल में डाल दिए गए, क्योंकि हक वालों को लोगों ने कभी वक्त पे नहीं माना। या आज हम उनका नाम लेके कहते हैं ना, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्ला और इमाम मालिक रहमहुल्ला और इमाम अहमद रहमहुल्ला। आपको पता है कि इनके दौर के लोगों ने इनको जेलों में डाला हुआ था, इनमें से एक इमाम का तो जनाजा भी जेल से उठा था। तो बात यह है कि उन्होंने वहां भी वक्त जाया नहीं किया। एक शख्स थे, दुश्मनों ने उनको जेल में डाल दिया, अब उनको तो अपना वक्त इस्तेमाल करना था, क्या करें कैसे करें। तो उसके लिए किसी तरीके से उन्होंने एक शख्स को मुंतखब किया कि तुम जेल की दीवार के बाहर बैठ के कुछ बोल के मुझे सुनाया करो और मैं अंदर बैठ के उससे इल्म हासिल करूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें तलब दे दे। ये इल्म के मोती हैं जो हम चुन रहे हैं, और इल्म के बगैर ये कहानियां हम तक नहीं पहुंच सकती। दूसरी बात इस हिस्से में क्या थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदर एक खूबी थी, लोगों ने उनको जेल में भी डाल दिया, अल्लाह ने उस खूबी को भी नुमाया कर दिया। क्या ऐसा नहीं होता कि जिंदगी में बहुत लम्हे हम इस बात पे बड़े परेशान रहते हैं कि फलां मेरी लेग पुलिंग कर रहा है, फलां मेरे खिलाफ कर रहा है, किसी को फलां मेरे खिलाफ पटियां पढ़ा रहा है, ये मेरे शौहर को मुझसे छीन लेंगे, ये मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं। निजी जिंदगी में देख लीजिए, खवातीन हर लम्हे इस खौफ का शिकार होती हैं कि वो प्यारे रिश्ते जो एक इंसान की इज्जत और केयर के रिश्ते हैं, बाज़ा फोन ही को समझ लेती हैं कि ये तो जरूरी अपने बेटे को ऐसी बात कह देंगी जो इसको मेरे खिलाफ कर देगा। इस आयत से अपने लिए अमल की बात ले लें, अगर आपके अंदर कोई खूबी है ना, आपको लोग पकड़ के जेल के अंदर भी डालें, इल्जाम ही लगते हैं ना, जेल में कोई खुशी से तो नहीं जाता। कोई आपको पकड़ के दरिया के अंदर भी डाल दे, आपके ऊपर इल्जाम और ताने भी लगा दे, अगर आपके अंदर कोई खूबी है तो अल्लाह ताला उसको उजागर कर देगा, अपना ईमान रखें। और अगर आपके अंदर कोई खूबी नहीं है तो लोग काबे की छत के ऊपर खड़े होकर आपके नाम के झंडे लगाने लगे और आपके गुण गाने लगे ना, तो वो खूबी खूबी नहीं रहेगी। असल बात इस बात का गम करने की बजाय के लोग मेरे खिलाफ ये ना कह दें, पहले मैं ना सुना दूं। अब देखिए कैसी नफसियाती उलझने है ना, जल्दी से सुना दो कि ऐसा ना हो कि वो पहले दूसरे की सुन ले। अच्छा, आपको पहले सुना दी होगी ना दूसरे ने, इसलिए अब मेरी बात नहीं सुन रहे। ये नफसियाती उलझने होती हैं, इससे निकलने का एक ही इलाज है कि इंसान अपनी इसलाह कर ले। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में थे और वहां के कैदियों में इनकी शोहरत फैल गई, बार बार वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें मुख्सनीन में से देख रहे हैं। वहां आपने देखा कि जेल में जो दो साथी थे उन्होंने ख्वाब देखा, एक बादशाह का शराब बनाने वाला था, एक रोटी पकाने वाले था, वो दोनों इस इल्जाम में वहां आए हुए थे। बात तो वाज है, मेरा उसमें कुछ कहने की तो जरूरत ही नहीं है। कहानी इतनी वाज तौर पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके ख्वाब की ताबीर बताई, लेकिन कोई उस वक्त उनसे मुआवजा नहीं लिया। पहले खामोश थे, लेकिन जब लगा कि इनको मेरी जरूरत है तो कहा अच्छा ठीक है, मैं दूंगा तुम्हें इस ख्वाब की ताबीर खाने के आने तक, चलो थोड़ी देर बातें ना करें। और उस वक्त में मुख्तसिर सा तौहीद का पैगाम दे दिया। सिर्फ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के एक दाई के रूप में हम देखें तो यहां सफों के सफे लिखे जा सकते हैं। तबलीग के रुख पे कोई लंबी बात नहीं की, सिर्फ एक बात, ये गुलाम है ना, गुलाम के सामने आए हैं, यानी ये लोग अपने बादशाह के मुलाजिम थे ना, तिसवा तबका था, तो इनको अल्लाह की गुलामी याद करा रहे हैं। कल बादशाह के सामने जाके तबलीग करेंगे तो हुकूमत की बातें करेंगे। एक सच्चे दाई दीन को अल्लाह ताला ये मलका दे देता है, और उसको ये फहम और फरासत मांगना भी चाहिए कि अल्लाह मुझे लोगों के साथ उनके हिसाब से बात करने की तौफीक दे, जैसे लोग होंगे मैं वैसी बात करूं। फिर उसके बाद आप देखिए कि जाते जाते बस उसको ये कह दिया, जब वो एक कैदी आजाद हो रहा था, कहा देखो मैं भी यहाँ बेगुनाह पड़ा हुआ हूँ और तुम जाके बादशाह से जरा मेरा जिक्र कर देना। जैसे इंसान दूसरे इंसान से कह देता है कि तुम मेरी बात जाके बाहर कर देना, कहा कि ठीक है। लेकिन वो बाहर गया, भूल गया, और ये भूल शैतान की तरफ से होती है। उसने जिक्र करना ही भुलवा दिया, और कितना ही अरसा गुजर गया। अब इसके बाद क्या हुआ, उस बादशाह को एक ख्वाब आता है, और उस ख्वाब को सुन के फिर उसको हजरत यूसुफ का ख्याल आता है। अगली आयतों में हम देखेंगे, वकाल अल मलिकु इन्नी अरा सब अबकरात इंसिमान। बादशाह ने कहा मैंने ख्वाब में देखा है कि सात मोटी ताजी फरबा गायें हैं, जिनको सात यानी सेवन लागर दुबली पतली गायें खा रही हैं, और सात बालियां हैं हरी हरी और दूसरी सात बिल्कुल खुश्क। ए दरबारियों, मेरे इस ख्वाब की ताबीर बतलाओ, अगर तुम ख्वाब की ताबीर दे सकते हो। उन्होंने जवाब दिया ये तो उड़ते उड़ते परेशान ख्वाब हैं, और ऐसे शोरीदा परेशान ख्वाबों की ताबीर जानने वाले हम नहीं है। इन दो कैदियों में से जो रहा हुआ था इसे मुद्दत के बाद याद आ गया और कहने लगा मैं तुम्हें इसकी ताबीर बतला दूंगा, मुझे जाने की इजाजत दीजिए। अब वो वहां से यूसुफ के पास दोबारा आता है, ए यूसुफ, ए बहुत बड़े सच्चे यूसुफ, आप हमें इस ख्वाब की ताबीर बतलाइए कि सात मोटी ताजा गायें हैं, जिन्हें सात दुबली पतली गायें खा रही हैं, और सात बिल्कुल सब्ज खोशे हैं, और साथ ही दूसरे भी बिल्कुल खुश्क हैं, ताकि मैं वापस जाकर इन लोगों से कहूँ कि वो सब जान लें। यूसुफ ने जवाब दिया तुम 7 साल तक पे दर पे लगातार हस्बे आदत गल्ला बोया करना और फसल काट कर इसे बालियों समेत ही रहने देना, सिवाय अपने खाने की थोड़ी सी मिकदार के। इसके बाद 7 साल नहायत सख्त कहत के आएंगे और वो इस गल्ले को खा जाएंगे जो तुमने इनके लिए जखीरा रख छोड़ा था, सिवाय इस थोड़े से के जो तुम रोक रखते हो। इसके बाद जो साल आएगा इसमें लोगों पर खूब बारिशें बरसाई जाएंगी, इसमें शीरा अंगूर भी खूब निचोड़ेंगे। और बादशाह ने कहा यूसुफ को मेरे पास लाओ। जब कासिद यूसुफ के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा अपने बादशाह के पास वापिस जा और इससे पूछ के औरतों का हकीकी वाकया क्या है, जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे, इनके हीले को सही तौर पर जानने वाला मेरा ही परवरदिगार है। बादशाह ने पूछा ऐ औरतो, इस वक्त का सही वाकया क्या है, जब तुम दाव फरेब करके यूसुफ को इसकी दिली मंशा से बहकाना चाहती थी। उन्होंने साफ जवाब दिया कि माशाल्लाह हमने यूसुफ में कोई बुराई नहीं देखी। फिर तो अजीज की बीवी भी बोल उठी कि अब सच्ची बात निथर आई है, मैंने ही से वरगलाया था इसके जी से, और यकीनन वो सच्चों में से है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा इस वास्ते कि अजीज मिस्र जान ले कि मैंने इसकी पीठ पीछे इसकी खयानत नहीं की, और ये भी कि अल्लाह दगाबाजों के हथकंडे चलने नहीं देता। वमा उबर्रियु नफसी इन्ना नफ्सल अम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहम रब्बी इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम। मैं अपने नफ्स की पाकीजगी बयान नहीं करता, बेशक नफ्स तो बुराई पर उभारने ही वाला है, मगर ये कि मेरा परवरदिगार ही अपना रहम करे, यकीनन मेरा पालने वाला बड़ी बख्शिश करने वाला और बहुत मेहरबानी करने वाला है। ये थी आयत नंबर 43 से 53, 43 से 53। इसका उनवान लिखिए कैद खाने से रहाई का वक्त करीब है। बहुत सारी बातें इस हिस्से से हमारे सीखने की। पहली बात तो आप देखिए कि हमने किसी को कोई काम कहा हो और वो भूल जाए, और तब हमारे पास आए जब उसको हमसे कोई काम पड़े तो हम क्या करेंगे। जब उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब सुनाया और उसने आते ही फौरन अपनी बात पेश कर दी, न सलाम न दुआ न माजरत कि मैं भूल गया था, इससे हम होते तो क्या करते। आ गई जरूरत, पड़ गई जरूरत मेरी, अच्छा लोग होते ही ऐसे हैं, ना शुक्रे और बेफैज, और बस मैं तो एहसान कर करके थक गई। क्या हम जिंदगी में यही शिकवे नहीं करते दिखते? हम फलां की इतने साल से खिदमत कर रहे हैं, हमें तो कोई नाम ही नहीं मिला। मैं तो उसको इतने साल से खुश कर रही हूँ, वो मुझसे खुश ही नहीं हुआ। वो हो भी कैसे सकता है, खुशी उसके हाथ में नहीं है। खुश तो अल्लाह करता है लोगों को आपसे। तो लिहाजा पहली बात जहाँ मुहसिनीन का इखलाक, कि जब बंदे को किसी के साथ अल्लाह के लिए एहसान करना होता है ना, और कोई शख्स अगर उसके लिए उसका शुक्रिया भी ना बोले ना, तो वो इसकी भी परवाह नहीं करता। भला क्यों? क्योंकि उसको पैसे कहीं और से मिल चुके होते हैं। आपने देखा कभी कोई शख्स कोई चीज़ खरीदता है, आप समझते हैं उसने आपके लिए खरीदी है, लेकिन वो किसी और ने मिल के खरीदी होती है। आप उसको कहते हैं इसके पैसे बताओ क्या है, तो वो क्या कहता है, नहीं नहीं रहने दें। फिर आखिर कहेगा, हाँ मुझे कहीं और से मिल गई। अल्लाह के लिए नेकी करने वाला शख्स ऐसे ही है। वो किसी के साथ भी कोई नेकी करता है ना, चाहे उसकी मदद, चाहे उसको सीखना सिखाना, उसको माफ करना, उसका दुनिया का काम, उसकी कोई बीमारी में टेक केयर करना, वो उसके पैसे रब से ले चुका होता है। अब वो दूसरों से लेगा ना तो ज्यादती करेगा, वो डबल ले लेगा, धोखा करेगा। इसलिए बिल्कुल बेनियाजी, किसी से किसी काम, किसी चीज, किसी शुक्रिया की भी इंसान उम्मीद ना रखे अगर वो मुहसिन बनना चाहता है। और अगर लोगों से तवक्को रख के कोई काम करेंगे तो सिर्फ मायूसियां ही होंगी, क्योंकि लोग आपकी उम्मीदों पे पूरे नहीं उतर सकते। अगली चीज इसमें हमने जो सीखी कि ख्वाब के साथ साथ अब उसका इलाज भी बता रहे हैं कि ये तो ख्वाब है, लेकिन अब तुम इस तरह से करो कि अनाज को समेट लो, ये उनका मुहसिन होना बताता है। फिर अगली चीज देखिए कि ये नहीं कहा कि तुम्हें क्यों बताऊं, मुझे लेके चलो जरा, मैं जाके भरे दरबार में बताऊंगा। नहीं, हम क्या होते हैं, हम नंबर बनाने लग जाते हैं। नहीं, मैं जाके बताऊंगी, तुम्हें क्यों बताऊं, मेरे नंबर कम हो जाएंगे। कर सकते थे ना कि भाई चलो मैं जाता हूँ जरा, मैं थका हुआ, इतने सालों से जेल में पड़ा हूँ, मुझे बुलाया ही नहीं। नहीं, फौरन बता दी पूरी बात। क्यों? कि जो काम करने वाले होते हैं ना, वो नाम से बेनियाज होते हैं। उनको ये नहीं होता कि हमें रिकग्नाइज नहीं किया गया, हमारा कहीं नाम नहीं लिया गया, हमें दरबार में बुला के कोई मेडल नहीं दिया गया। नहीं भाई, ये बात है जो, और जो मुखलिस होता है ना, वो एक की बजाय चार बातें बताता है। उसका दिल ही नहीं भरता, वो कहते हैं नहीं, इनको और बता दो, इनकी और इसलाह कर दो, इनको और तरीके से रास्ता बता दो। अच्छा, यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है। नहीं, जरा इधर जाए, चले आए, मैं ही साथ जाता हूँ। यानी वो बंदा उस बंदे की तरह नहीं होता जो आपके, हाँ वो जाती है सड़क जाओ चले जाओ। फर्क है ना दोनों में। मोहसिन जो होते हैं ना, वो लोगों को हर मुमकिन फायदा देना चाहते हैं। बाज दफा इसके लिए उनको अपने असूलों को भी तोड़ना पड़ता है, लेकिन वो कहते हैं कि किसी को फायदा हो जाए हमसे। अगली बात जो हमें इससे पता चली, और वो क्या थी, कि जब बादशाह को ख्वाब पता चला, वही ख्वाब जिसको उनके अपने दरबारी कह रहे थे ये कुछ भी नहीं है, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी कितनी जबरदस्त किस्म की ताबीर दी। तो ये फर्क होता है किसी साहिब इल्म को अपना ख्वाब बताने में, और एक अपने ही जैसे इंसान को बताने में, कि जो बाज दफा अच्छी भली चीज को बिल्कुल एक बेकार चीज कह के बयान कर देता है। फिर अगली चीज इससे पता चलती है, और वो क्या, कि किसी काफिर को भी सच्चा ख्वाब आ सकता है। आप आगे देखेंगे कि ख्वाब सच हुआ, बिल्कुल वैसी वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताई। फिर अगली बात देखिए, एक वक्त ये था कि यूसुफ निकलते बाहर और कहते प्लीज मेरी मदद करो, और मेरे पे इल्जाम लगा है, और दिस एंड दैट, वो शख्स भूल गया था। उसमें एक हिकमत थी, अगर उसके कहने पे बादशाह मुकदमा चलवाता तो यूसुफ की पोजीशन बिल्कुल फर्क थी। ये तो ऐसी जैसे आप किसी से मदद मांगने उसके दरवाजे पे चला जाए। थोड़ा सा इंतजार हुआ, लेकिन बादशाह ने कहा निकालो उसको, जल्दी लाओ, बुलाओ। दोबारा वो गया, चलो भाई आपकी तो सुनी गई, आपको तो बुला रहे। कहेंगे मैं तो नहीं जाऊंगा। भाई क्यों नहीं जाऊंगा? इसलिए कि मेरे ऊपर एक इल्जाम है। पर इल्जाम धोए, अल्लाह के नबी कहते हैं कि अगर मैं यूसुफ की जगह होता तो मैं बादशाह के कासद के साथ फौरन चल पड़ता। अल्लाह यूसुफ पे रहम करे, उनका सब्र कितना था। कहा मैं नहीं जाऊंगा, जाओ पहले मेरा दामन साफ करो। भला क्यों? जरा सोचिए। इसलिए कि यूसुफ को कल अल्लाह के दीन का काम करना था, और जब अल्लाह के दीन का काम करने वाले के दामन पे धब्बा लगता है ना, तो वो अल्लाह के दीन पे धब्बा लग जाता है। हर वो बंदा जो अल्लाह के दीन के लिए बिक चुका है ना, उसको अपनी जात को इसी तरह साफ रखना है कि जैसे वो अपनी किसी जाती चीज के लिए करता है, उससे भी भड़के। क्यों? कि अगर एक शख्स जो जेल से निकला, एक कैदी था, उस पर जिना का इल्जाम था, अब वो कल लोगों को दीन की बात सुनाने जाएगा, वो कहेगा अच्छा जी आप वही है ना, पता है आपकी सारी कहानी, सब पता है। ये बर्दाश्त नहीं होती बात। इस वाक्य पे फिर मुझे इमाम बुखारी का एक वाक्य याद आ जाता है, मैंने लास्ट ईयर भी शायद सुना ही होगा, क्योंकि मैं हमेशा सुनाती हूँ नायतों पे। एक मौके पे सफर में थे, इनके पास अशरफियों की थैली थी, 1000 अशरफियां होंगी, और अशरफी ऐसे गोल्ड कॉइन्स। जब सवार हुए बैठे, दूसरे भी लोग थे जो साथ, एक शख्स बैठा तो उसको बातों में बता दिया कि मेरे पास इस तरह माल है। थोड़ा सा आगे जब गए तो वो जो साथ बैठा शख्स था ना, उसके दिल में मैल आ गया। थोड़ी देर हुई तो अपनी जगह पे खड़ा होके तो शोर मचाने लगा, हाय मेरी थैली खो गई, हाय मेरी अशरफियों की थैली खो गई। इस सोच से कि अभी जब वो तलाशी लेंगे वो इमाम बुखारी के पास मिलेंगी तो ये कहूंगा मेरी है। अच्छा भी कहाँ गई कहाँ गई, चलो जी तलाशी दो। अब लोग तलाशी लेना शुरू हो गए, सबकी ले रहे हैं। इसको यकीन था कि अभी इनके पास निकलेगी तो मैं कह दूंगा ये मेरी है। लेकिन जब इमाम बुखारी की तलाशी ली कुछ भी नहीं मिला, है ही नहीं थी शर्फी उनके पास। हर मामला रफा दफा हो गया, चुप करके बैठ जाओ भाई, कोई नहीं है, नहीं होगी, बात आई गई हो गई। उसके बाद फिर एक अरसे के बाद उस शख्स की जब इमाम बुखारी से दोबारा मुलाकात हुई, कहने लगा आप मुझे ये बताएं कि आपको मुझसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी, जब आपके पास अशरफियाँ नहीं थी तो आपने मुझे क्यों कहा कि मेरे पास है। और उसके बाद जो बात हुई उन्होंने कहा नहीं मेरे पास थी। कहा फिर क्या हुआ? कहा जब तूने ये कहा ना कि मेरी अशरफियाँ खो गई हैं तो मैंने चुपके से अपनी अशरफियों की थैली समंदर में फेंक दी। क्यों? कि अगर इस वक्त अशरफियाँ मेरे पास निकली तो कोई नहीं मानेगा ये मेरी है, और मैं अल्लाह के नबी की हदीस जमा करता हूँ, मैं अपने दामन पे ये धब्बा नहीं लगवा सकता कि इमाम बुखारी चोर है। मैंने 1,000 अशरफियों की कुर्बानी देना पसंद कर ली, लेकिन मैंने अपनी जात पे धब्बा नहीं लगवाया। कहाँ है आज ऐसे लोग जो अपनी जान और अपनी माल अल्लाह के लिए बेचने वाले हों? अल्लाह हमें उनमें शामिल तो करवा ले, उस दर्जे के नहीं, लेकिन अल्लाह ताला हमसे कोई ऐसा करवा तो ले। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम निकल ही नहीं रहे बाहर, कहने लगे नहीं निकलूंगा। और फिर वही बात हुई, पुरानी फाइलें खुली, फिर वो सारी औरतें आईं। अब देखिए ये वो वक्त होता है जो एक इंसान की फतह का वक्त होता है। इस वक्त जो खुशी होती है वो शायद दुनिया की किसी नेमत को पाने में ना हो। और वो क्या कि उन सारी औरतों ने कहा नहीं भी हमने ज्यादती की थी, यूसुफ बड़ा साफ सुथरा है। फिर अजीज मिस्र की बीवी भी बोली हाँ हाँ नहीं कसूर मेरा ही था। इस वक्त का इंतजार करना चाहिए, और याद रखिए ये वक्त आता है, सिर्फ इसके लिए शर्त क्या है, सब्र और तकवा और इंतजार। सिर्फ वक्त का इंतजार करें। अगर आपके घरों में, खानदानों में, आपके सियासी मामला तो क्या होंगे, आपके मुआशी झगड़े, जायदाद के झगड़े, विरासत के झगड़े, लिखते जाइए अपनी जिंदगियों की कहानियां। कहीं अगर आपके साथ ज्यादती हुई है ना, एक वक्त आएगा अगर आपने उसका कोई मिस यूज नहीं किया ना, वो शख्स आपके सामने आपके गले से लग के रो रहा होगा कि मैंने ज्यादती की थी, मुझे नहीं पता। और आपके अखलाक उस वक्त क्या होना चाहिए? अच्छा मुझे पता था तुम ऐसे ही हो। नहीं, फिर वो एक लफ्ज़ नहीं है, वो क्या होगा? वो आगे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किरदार से मजीद सीखेंगे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।